लिखूं भला मैं कैसे तेरी शान फातिमा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहलिल बैति व युतहहिरकुम तत्हीरा। اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو بلند ترین اور عظیم ترین جلال کا مالک ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی چونٹی کے نشان دیکھ لیتا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ تمام تر حمد و ثنا کے ساتھ تمام تر درود و سلام محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم کی ذوات مقدسہ پر، کہ جو نہ صرف وجہ تخلیق کائنات ہیں بلکہ پروردگار عالم کی شناخت کا ذریعہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے ولادت بسعادت شہزادی کونین مخدومہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر، یوسف زہرا حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی، تمام مجتہدین اعظام، آپ سب کو اور دنیا کے تمام محرومین و مستضعفین جہان کو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ولادت باسعادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وزڈم گیٹ وے نے عالمی یوم خواتین بمناسبت ولادت بسعادت شہزادی کون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ایک پروگرام منعقد کیا ہے، جس میں کوشش کی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والی خواتین سے رابطہ قائم کیا جائے، ان کو مدعو کیا جائے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی جائے۔ اپنے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں ہمارے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے والی خواتین جو اپنے اپنے شعبوں میں ایک بہترین کردار ادا کر رہی ہیں، وہ سب موجود ہیں، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
ڈاکٹر زرین صادق این ای ڈی یونیورسٹی میں کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں۔ آپ گزشتہ کئی سالوں سے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ 2021 میں آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ماشاء اللہ۔ کافی ٹائم سے آپ ذاکری بھی کر رہے ہیں کہ فرائض بھی انجام دے رہی ہیں، ایک اچھے علمی اور مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہوں گی اپنے پروگرام میں۔ اور پھر آپ سے جب درس و تربیت کی بات ہو رہی ہے، تو کیونکہ آپ کا تعلق یوتھ سے ہے، آپ اس وقت یوتھ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ یوتھ کے مسائل جو آج کل ہیں، وہ کس طرح ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے فیض حاصل کرتے ہوئے اب اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ اور اس دور میں ہم بی بی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایک بہترین طالب علم اور بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ جی خورسدہ،
سب سے پہلے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم سے کچھ بات کرنے کا موقع دیا۔ البتہ میری جو عرض ہوگی وہ بالکل طالب علمانہ ہوں گی، دینی لحاظ سے کوئی کوالیفیکیشن میرے پاس موجود کیونکہ نہیں ہے، اور دنیاوی آپ کہہ لیں کہ یہ ڈگری میرے پاس موجود ہے۔ البتہ جو کچھ میں نے اپنی حسب توفیق دینی علوم کے حصول میں کچھ وقت گزارا اور اس کے بعد پھر جو کچھ تجربے سے حاصل کیا، میں ضرور چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں، خواتین کیا بلکہ یوتھ کو جو میسیجز ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس سے ملتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے جیسے ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آئے ہیں کہ بی بی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے، ہمارے لیے شہزادی کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے، بی بی کی سیرت و کردار۔ البتہ فقط ہم خواتین کے لیے نہیں بلکہ تمام مرد حضرات کے لیے بھی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں حضرت حجت کا یہ فرمان نہ ملتا कि मौला ने फरमाया कि वफी नचर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली उसवतुन हसना, मेरे लिए मेरी जद्दा की सीरत में बेहतरीन नमूना अमल है। तो बीबी की सीरत और किरदार में हमें क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं? सबसे पहले तो जिंदगी गुजारने का जो तरीका हमें शहजादी की जात मुकद्दस से मिलता है वो क्या है? जो चीज मैंने अखज की है अब तक जनाब सईदा सलामुल्लाह की जिंदगी को पढ़ के और उसके बारे में कोशिश करके, मुझे यही समझ आता है कि इंसान के लिए जिंदगी में मसरूफ रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अगर आप बहैसियत खातून देखें तो ना फकत जनाब रिसालत माम ने बल्कि खुद खुदावंद मुताल ने जनाब सैयदा की जात को एक मरकजियत अता की है। यानी इस तरह जनाब जिब्राइल अलैहि सलातो वसलाम को तारुफ कराना कि हुम फातिमतु व अबूहा व बाकलुहा व बनुहा, जनाब सैयदा की जात को मरकज करार दिया। उलमा से बार बार हम ये बात सुनते हैं और कुतुब में पढ़ते हैं कि फिर इस तरह की कुछ अहादीसें कुदसी हैं जो हमें मिलती हैं कि लौला कलमा खलकतुल अखलाक व लौला अली लमा खलकतुक व लौला फातिमा लमा खलकतुकुमा। जनाब सैयदा की जात को मरकजियत हासिल है। खुद जनाब रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि मेरी
मसल्ला
बेटी उम्मे अबीहा है। उम्मे अबीहा यानी आप उलमा कहते हैं जब इस पे कलम उठाते हैं कि अगर आप फिलोसॉफिकल नुक्ते नजर से इसको देखें, उम्मे अबीहा यानी अपने बाप की माँ। जो माँ होती है वो एक खानवादे का मरकज होती है। माँ असल में जड़ होती है कि जिससे फिर बच्चे स्टेम आउट होते हैं, जहां से खानवादा निकलता है वो माँ की मरकजियत है। जनाब रिसालत माँ आपका ये कहना कि मेरी बेटी उम्मे अबीहा है, मेरी बेटी अपने बाप की भी माँ है, ये जो खुदावंद मुताल ने जनाबे सैयदा की जात को मरकजियत अता की है, मुझे आज के जमाने में इस मरकजियत के अंदर जो सिग्निफिकेंस नजर आती है, आप देखें कि अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि खवातीन जब ये अपना तारुफ कराती हैं कि हम हाउसवाइफ हैं तो वो एक तरह से एक शर्मिंदगी के साथ इस बात का तारुफ कराती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं। अलबत्ता कुछ नहीं करना नहीं है बल्कि उनका जो ये काम है, यानी आप अगर देखें बहैसियत मजमूई एक घर को संभालना, एक घर को चलाना और उसके साथ बच्चों की तालीम और तरबियत और उनको पालना, बहैसियत बजाते खुद एक पूरा काम है। यानी पूरे दिन के ऊपर मुहित ये काम है। इस जमाने के अंदर आपके लिए मसरूफियत बहुत जरूरी है, चाहे वो मसरूफियत जहनी हो चाहे वो मसरूफियत जिस्मानी हो। यानी अगर आप अपने घर में रहते हैं और आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करते हैं और आप अपने घर को चलाते हैं और अपने घर के इंतजामी उमूर को संभालते हैं, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा काम है। अलबत्ता अगर आपको महसूस हो कि इसके बावजूद भी आपको कुछ जहनी वक्त मिलता है, कुछ फारिग औकात मिलते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छा है। जैसे आयतुल्ला खामेनाई ने भी फरमाया था कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है खवातीन की वो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो वो जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज खवातीन के पास मौजूद है, हम क्यों ना उनका इस्तेमाल करें, लेकिन अलबत्ता इस चीज के ख्याल के साथ कि खवातीन का मैदान अमल में आना बहुत जरूरी भी है, लेकिन इस ख्याल के साथ कि उनको फिर उस लिहाज से रिलैक्सेशन दी जाए कि घर के अंदर जो खातून का किरदार है वो कभी भी एक मर्द सर अंजाम नहीं दे सकता। जनाबे सैयदा की जाते मुकद्दस से हमें समझ आता है कि अल्लाह ने बीबी की जात को मरकजियत और बेसिस करार दिया है, यानी फाउंडेशन है बीबी। बीबी बुनियाद है। किसकी बुनियाद है? नबूवत और इमामत की जो इमारत तामीर है वो शहजादी की बुनियाद पर तामीर है। यानी बीबी इस खानवादे का सपोर्ट सिस्टम है। यानी जितना भी काम नबूवत और इमामत का विलायत का हमें माशरे में नजर आ रहा है उसके पीछे शहजादी की जात है। बीबी बुनियाद है, बीबी मरकज है। और आप देखें कि जो मरकज होता है या जो फाउंडेशन होती है किसी इमारत की, वो फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है उतनी ही इमारतें भी मजबूत होती हैं। तो जनाब रिसालत माप का या जनाब अमीर मोमिनीन का जितना काम हमें नजर आ रहा है उसके पीछे जो तमाम सपोर्ट है वो शहजादी की है। न फकत इतना बल्कि जो भी मसाइब जनाब रिसालत माप ने और जनाब अमीर मोमिनीन ने अपनी जिंदगी में सहे उसके पीछे, यानी आप देखें जो फाउंडेशन होती है वो शॉक एब्जॉर्बर होती है। यानी जो भी शॉक्स आते हैं उसे फाउंडेशन एब्जॉर्ब करती है तो फिर ही इमारत खड़ी रह सकती है। तो शहजादी सलामुल्लाह अलैहि की जात ने वो तमाम शॉक्स एब्जॉर्ब की हैं। यानी जितने भी मसाइब और मुश्किलात जनाब रिसालत माब और जनाब अमीर मोमिन की जिंदगी में आते हैं शहजादी उनको एब्जॉर्ब करती हैं और अपनी पूरी जान और अपनी पूरी कुव्वत के साथ नबूवत और इमामत को और विलायत को सपोर्ट करती हैं। तो आप इसी तरह से देखें, आप अपने घर की जिंदगी पे अगर तवज्जो करें तो एक खातून का बा किरदार होना और एक खातून का सही डायरेक्शन पे अपनी जिंदगी को लेके जाना कितना जरूरी है उस पूरे खानवादे के सही डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। यानी आप देखें, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से निकलने वाले अफराद, ख्वाह वो मेरा भाई हो, ख्वाह वो मेरे वालिद हो, ख्वाह वो मेरा मेरे मेरी जौज हो, ख्वाह वो मेरे बच्चे हो, अगर वो मैं चाहती हूँ कि वो माशरे के मुफीद अफराद हो, तो उनके पीछे जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरा सपोर्ट सिस्टम होगा, यानी मुझे उनको सपोर्ट करना है तो फिर वो मुआशरे के मुफीद अफराद बन सकते हैं। तो हमें शहजादी की ज़ात अकदस में ये बात बहुत ही नुमाया तरीके से नजर आती है। और फिर आप देखें कि जो बीबी का हिजाब है, यानी वैसे बजाहिर जो बुनियाद होती है वो मख्फी होती है इंसान की नजर से, और वाकई शहजादी का जो हिजाब है वो शहजादी को छुपाता है, लेकिन शहजादी के फकत फिजिकल बीइंग को, बीबी के जिस्मानी खद्दोखाल को छुपाता है। अलबत्ता उस हिजाब के बावजूद जो बीबी की बेहतरीन खसाइश हैं, जो बेबी की बेहतरीन खसूसियात हैं, जो वो बेहतरीन अकदार हैं जो उन्होंने माशरे को अता की, वो उस हिजाब के साथ भी बदरजे अतम हमें मिलती हैं। यानी बीबी यही बताना चाहती हैं कि अगर आप मुआशरे के कारगर अफराद की पीछे परवरिश कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पे क्योंकि आपके पास कुछ वक्त मौजूद है और आप मुआशरे में आके भी अपना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो हिजाब है वो एक्चुअली आपको लिबरेट करने वाला है, यानी आपकी जो बेहतरीन खसाइश है उनका सामने लाने वाला है। अलबत्ता आपकी फकत फिजिकल बींग के हद्दो हाल को छुपाकर, और आपको पूरी लिबरेशन देने वाला आपका हिजाब है, यानी आपको पूरी कुव्वत और सलाहियत के साथ अपनी खसाइस को दुनिया से मनवाना हो तो आप हिजाब में आइए, और जब आप हिजाब में आते हैं तो खुदावंद मुताल आपको बेहतरीन लिबरेशन अता करता है। तो ये जो बीबी की जात अकदस में हमें महसूस होता है कि इस्लाम ने वाकयान जिस तरह खातून को उसकी खातून की इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व किया है, यानी खातून की इनफरादियत को प्रिजर्व किया है। अगर ऐसा ना होता तो खुदावंद मुताल हरगिज भी जनाब सैयदा की जात को मरकजो महवर ना करार देता। अगर ऐसा ना होता तो आप देखें उलमा हमें बताते हैं कि किस तरह वो जमाना कि जिसमें लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जनाब रिसालत माब ने इतनी बड़ी एग्जाम्पल सेट की कि उस जमाने में अपनी बेटी के लिए मौला अपने मकाम से खड़े होते थे, बुलंद होते थे, और फिर बीबी का इस्तकबाल किया करते थे। तो बीबी की ज़ात अकदस में जो सबसे नुमाया बात है वो इंसान की अपनी, यानी खातून की अपनी इनफरादी हैसियत, यानी इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी की प्रिजर्वेशन, ये शहजादी की ज़ात अकदस में हमें हमें बेहतरीन मैसेज मिलता है। अलबत्ता अगर हम बहैसियत मजमूई तमाम इंसानियत के लिए, जैसे कि अल्लाह ने कुरान में भी कहा फरमाया कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन, कि हम तमाम ईमान लाने वालों के लिए फिरौन की जौजा की मिसाल पेश करते हैं, बयान करते हैं, तो यानी अल्लाह ने सिर्फ खवातीन के लिए जनाब आसिया की मिसाल को बयान नहीं किया, बल्कि तमाम अफराद के लिए, तमाम ईमान लाने वालों के लिए, मर्दों के लिए और खवातीन के लिए। इसी तरह जनाब सईदा की जात मर्दों और खवातीन दोनों के लिए बहैसियत मजमूई एक मिसाल है। जैसे मैंने आपके सामने अर्ज की हजरत हुज्जत का ये बयान कि मेरे लिए बीबी की जात में बेहतरीन नमूना अमल है, इसमें जो मुझे पहलू नजर आता है और जो इसमें मैं जो इस बारे में सोचती हूँ कि मौला ने ये क्यों फरमाया होगा, तो मुझे एक बात बहुत वाजह महसूस होती है कि बीबी ना फकत ये कि नबूवत और इमामत का सपोर्ट सिस्टम है, बल्कि बीबी ने एक बहुत बड़ा कारनामा जो अपनी जिंदगी में, अपनी फकत 18 साल की जिंदगी में सर अंजाम दिया, वो ये था कि बीबी ने हक और बातिल को बहुत वाज़ेह तौर पे अलहदा कर दिया। जैसे खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में कहा कि कद तबैना रुश्दु मिनल गई, कि हिदायत गुमराही से अलहदा की जा चुकी है, बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। तो जनाब सैयदा की ज़ात अकदस जिस तरह रिसालत और इमामत और विलायत को सपोर्ट करती है, और इसके साथ साथ हक और बातिल को बहुत वाज़ेह तौर पर अलहदा करती है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। यानी आप देखें जनाब रिसालत माम और जनाब अली मुर्तजा, मौला का जो सीरत व किरदार है, यानी जनाब रिसालत माब की जिंदगी के आखिरी अय्याम है, वाकई कलम व किरतास होता है, जनाब अमीरुल मोमिनीन की जनाब रिसालत माब के बाद की जो जिंदगी है उसमें जनाब अमीरुल मोमिनीन का हक तल्फ किया जाता है और हक को छीना जाता है, इसके बावजूद जो मौला की यानी जनाब रिसालत माब की और जनाब अमीरुल मोमिनीन की खामोशी नजर आती है, यानी जनाब अमीरुल मोमिनीन का तलवार ना उठाना, और इस तरह जनाब रिसालत माब का वाकई कलम व किरदार पे खामोश हो जाना और उसको झेल जाना, आप महसूस कीजिए इस चीज को। और ये मेरी एक तालिब इल्माना राय है कि आप, हम अगर इस चीज को महसूस करें कि जिस तरह से जनाब अमीरुल मोमिनीन ने एक किनारा कशी को इख्तियार किया और उसके बाद तलवार को नहीं उठाया, जनाब सैयदा की जात अकदस अगर ना होती तो आज आपकी पोजिशन और आपकी स्टैंडिंग क्या होती? यानी बीबी ने इस तरह वाजह कर दिया गुमराही को हिदायत से, बिल्कुल अलहदा अलहदा डिस्टिंग्विश कर दिया बीबी ने, हमारे लिए रास्ते को इख्तियार करना, हक को वाजह करना, ये शहजादी का कारनामा है। आप देखिए अगर जनाब सैयदा की जात अकदस ना होती और हमें बीबी की तारीख में, बीबी की सीरत और किरदार में वो खुद बात ना मिलते जिन्होंने वाजह कर दिया कि हक का रास्ता कौन सा है, तो आज हमारी पोजिशन और हमारी स्टैंडिंग क्या होती? वाकई ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता। तो क्योंकि शहजादी ने इस तरह से हक और बातिल को वाजह कर दिया, और यकीनन जनाब रिसालत माब का उस वाक़ कलम कर्तास पे खामोश रहना या जनाब अली मुर्तजा का तलवार ना उठाना, ये इलाही मसलहत थी। क्यों? क्योंकि वो अवाइल इस्लाम का जमाना है और हम इसके हालांकि वो जानते थे कि किन किन सीनों में निफाक छुपा हुआ है, इसके बावजूद क्योंकि वो ये भी जानते थे कि उन्हीं असलाब से कुछ मुसलमानों ने इस दुनिया में आना है, लिहाजा उनकी खामोशी इलाही मसलहत थी। अलबत्ता जो जमाने के इमाम ने फरमाया कि मेरे लिए मेरी जद्दा की सीरत में बेहतरीन नमूना अमल है, मौला का जो जमाना है वो बिल्कुल आखिरी जमाना है और मौला बिल्कुल इस तरह से वाजह कर देंगे और कुफर और निफाक का फैसला करेंगे कि जैसे शहजादी ने कुफर को और गुमराही को हक से बिल्कुल अलहदा कर दिया।
बहुत बेहतरीन अंदाज से बीबी की इस सीरत मुबारका के इस पहलू को वाजे किया। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर जरीन आपके और हैदरी आपके कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और बीबी के सीरत व किरदार को समझने में हमारी मदद की। जजाकल्ला खैर। कनाडा से हमारे पास तशरीफ रखती हैं खोहर हैदरी फातिमा। आप का ताल्लुक कराची से है, दरसो तदरीस से वाबस्ता रही हैं। बेसिकली आपने दानिशगाह उलूम इस्लामी से वो इल्म दीन हासिल किया है, कनाडा मूव हो गई हैं। कनाडा में प्रे स्कूल में तरबियत के फराइज सर अंजाम देते हुए आप बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रही हैं। तो मैं इब्तदा हैदरी खोर हैदरी आपसे ही करूँगी कि ये मतलब इस वक्त हमारा मसला सबसे बड़ा एक औलाद की तरबियत बहैसियत माँ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस दौर में। तो क्योंकि ये प्रोग्राम बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, तो आप किस तरह देखती हैं कि हम बच्चों को ख्वातीन के पास हम किस तरह दर्स हासिल कर सकते हैं बीबी फातिमा के जिंदगी से तरबियत में, खुसूसन बच्चों को दौरे हाजिर में।
वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिंदे जरा सलाम। देखिए, जब हम सीरत की बात करते हैं ना, तो एक तो ये कि सबसे पहले सीरत से वाकफियत बहुत अहम है। और जब हम वाकफियत की बात करते हैं तो वाकफियत में एक बहुत अहम पॉइंट होता है, और वो होता है कि आप किसी के अमल को देखें और उसके अमल के पीछे जो लॉजिक है उसको पहचानें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप एक तो हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काम करते हुए देखते हैं, ये हमें नहीं पता होता कि वो ये काम क्यों अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जब आप ये जान लेते हैं कि उस काम उस अमल के पीछे लॉजिक क्या है, तो असल में आप उस अमल की हकीकी मार्फत हासिल कर सकते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के जब भी हम किसी भी पहलू की बात करें, उसके पीछे लॉजिक का जानना बहुत अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग दरिया हज़रत अथार अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं, और अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के दर में यानी उनके वजूद में जो पाकीज़ा तरीन वजूद है वो शहजादी सलाम है, कि तमाम तर बरकतों और तमाम तर मानवियत और तमाम तर रूहानियत का मंबा शहजादी कौन जनाब ज़हरा सलाम है। और वो महज एक बहसते खातून के नहीं बल्कि हर पहलू उनका नहायत मुकम्मल और जामे है। लेकिन अब चूंकि हम बहसते खातून के और चूंकि बीवी की विलादत का मौका है और माँ की हैसियत से आज़ादी के वजूद को देखने जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि अगर कायनात में कोई मुकम्मल माँ है तो वो शहजादी की जाए, अगर कोई हम कहें कि कामयाब तरीन माँ तो वो शहजादी की हस्ती हमारे सामने नजर आती है। और शहजादी के हर अमल के पीछे एक बेहतरीन लॉजिक होती है। मसलन हम देखते हैं जब हदीसों के सामने कि किस अंदाज से बच्चों के अंदर अदब को पैदा किया गया, कि हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चे घर में दाखिल होते हैं तो सलाम करते, और सलाम भी एक इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में किया गया, और जब जवाब देती हैं माँ तो वो कितना मोहब्बत भरा अंदाज, कि कहती हैं कि कुर्रत अइनी व समरत फुआदी, यानी अपने अंदर के जज्बात का इजहार किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हम सब अपने नेचुरली हैं अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत का इजहार नहीं होता, जो हम देखते हैं भरपूर अंदाज में हजरत सलाम के घराने में दिखाई देता है, कि एक दूसरे से मोहब्बत का अंदाज मुखातिब किया जाता है तो मोहब्बत भरे अंदाज। ये जो अंदाज है इससे ना सिर्फ ये कि एक दूसरे के दरमियान बॉन्डिंग कायम होती है, जिसको हम लोग आजकल के अपने घर में मिसिंग फील कर रहे हैं। तो ये वो बॉन्डिंग जो है खानदानों में अफराद के दरमियान नहीं है। जो हम देखते हैं हजरत अलैहिस्सलाम के घराने में वो बॉन्डिंग दिखाई देती है कि मोहब्बत का क्या इजहार करने का क्या अंदाज। और फिर देखते हैं कि जिस तरह से एक फर्जंद को जो हासिल किया तो कुर्रत-ए-आइनी बस हमारा था वो आदि बिल्कुल उसी अंदाज में दूसरे फर्जंद भी वो खातिब फरमाया। तो मसावात दिखाई देती है कि किस तरह से बीवी ने बच्चों के दरमियान मसावात रखी। और ये बहुत अहम पॉइंट है कि हम जब बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम एजुकेटर भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि हमारा बच्चा क्लास में बाकी बच्चों के मुकाबले में कैसे। नहीं, हमें किसी बच्चे को किसी से मुकाबला नहीं करना। क्यों? इसलिए कि एक इंसान दूसरे इंसान के मुकाबले पे आए तो फिर तो जंग होती है। एक इंसान दूसरे इंसान का मुआविन होता है, मददगार होता है, और उसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे के दरमियान मसावात कायम। और यही वो पॉइंट है जो बीवी की सीरत से हमें दिखाई देता है कि बच्चों के दरमियान मसावात कायम है, और बच्चों के दरमियान मसावात के जरिए एक बच्चों की आपस में मोहब्बत कायम। क्योंकि तो हम देखते हैं कि जब आप बच्चों के दरमियान कॉम्पिटिशन क्रिएट करते हैं ना, तो बच्चे उस कंपटीशन, देखिए हर किस्म का कंपटीशन में दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और बिल्कुल ऐसे ही होता है आमतौर पर हमारे घरों में कि बच्चों के दरमियान कहा जाता है वो देखो वो तुम्हारा बड़ा भाई वो ऐसे कर रहा है, या अगर और इंसल्ट करनी होती है तो हम कहते हैं कि वो देखो वो तुम्हारा छोटा भाई है या छोटी बहन है और वो ऐसे करिए, तुम नहीं कर सकते। ये जो माहौल क्रिएट किया जाता है हमारे घरों में, शहजादी बता रही है कि इससे मोहब्बतें कायम नहीं होंगी, इससे दिलों में दूरियां पैदा होंगी। लेकिन अगर मसावात होगी घर के अंदर, माँ बाप की मोहब्बतों के अंदर, तो बच्चों के दरमियान आपस में मोहब्बतें कायम होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये खानदानों को जोड़ के रखने के लिए बच्चों की आपस में मोहब्बत और बच्चों का आपस में एहतराम बहुत इम्पोर्टेंट। और शहजादी की तबीयत में जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को मुअद्दब बना देंगे तो बच्चे खुद बखुद एक बेहतरीन इंसान। अदब और एहतराम एक दूसरे का करना, और ये एहतराम करना घर से ही सीखते हैं बच्चे, कि कैसे घर में बहन भाई एक दूसरे का एहतराम करते हैं, कैसे घर में माँ बाप आपस में एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और इस एहतराम के जरिए हम बच्चों को मुआशरे का एक बेहतर और एक मुआविन फर्द बनाते हैं। क्योंकि जब भी आप कहीं मुआशरे में बाहर जाते हैं, आपको अगर किसी से इज्जत लेनी होती है तो पहले उसको इज्जत देनी पड़ती है। और ये बहुत मुश्किल होता है कि हम दूसरों को इज्जत दें, लेने का हक तो हर कोई जान। तो शहजादी की सीरत के मुख्तलिफ पहलू हैं, खुसूसन तरबियत के हवाले से, कि हमें लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि एक एक लम्हे को गोया शहजादी ने इस्तेमाल किया, यूज किया। किसी लम्हे में शहजादी ने बच्चों की तरफ से या तरबियत की तरफ से कोताही नहीं बरती है, क्योंकि शहजादी का वजूद, और अगर हम इसको यूं कहें कि शहजादी ने हसनैन जैसे शख्सियात को परवान चढ़ाया, जो कयामत तक के लिए तमाम इंसानों के लिए हिदायत राह है, मशाले राह है। तो शहजादी की शख्सियत में हमें जो तरबियत के पहलू में इतनी इतनी बेशुमार चीजें दिखाई देती हैं कि जब बीवी ने बच्चों ने अपने खत का तकाबुल करवाना चाहा तो बीवी ने किस अंदाज से उसका उसका फैसला किया कि पहले तो बीवी करना ही नहीं चाहती थी मुकाबला, बीवी का कि जाओ बच्चों अपने बाबा के पास जाओ, और फिर बाबा ने रसूल खुदा के पास भेजा, और फिर खुद परवरदिगार आलम ने वही राजी कर के फातिमा से कहें कि वो फैसला कर। यानी खुद परवरदिगार चाहता था कि बच्चों के दरमियान फैसला माँ करे, क्योंकि जो माँ का फैसला जितना बच्चों के दिलों पे असर रखता है वो किसी और का नहीं रखता। और यही वजह थी कि बीबी ने, और फिर जिस तरह से बीबी ने हार के कोई खोला और उसके बाद उसके बराबर के खुदा की मसलहत भी यही थी कि माँ के हाथों से फैसला। तो जिस तरह से बीबी बार बार बच्चों से कहती थी कि आज नाना ने मस्जिद में क्या फरमाया, आज मस्जिद में क्या हुआ, यही गोया कि ऐसा नहीं था कि बीवी नहीं जानती थी कि मस्जिद में क्या हो रहा है, या घर पहले मस्जिद में ही था, लेकिन बीवी बच्चों को मोटिवेट करती, किस तरह से बच्चों की शख्सियत में एतमाद दिया बीवी ने कि वो नाना के तर्जुमान बचपन से बने। कि अपने अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को या उनके फरमान को कोट करने का जो तरीका बीवी ने सिखाया, ये इतनी बारीक पहलू हैं। और हम देखते हैं कि एक एक पहलू में बीवी के बेहतरीन मिसालें हैं।
बेशक जज़ाकअल्लाह ख्वाहर हैदरी, वाकई बहुत बारीक बारीक नुकात थे जिनको आपने बहुत अच्छी तरह बहुत ही मुख्तसर वक्त में बेहतरीन अंदाज के साथ बयान किया। खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए।
हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा रिजवाना अब्बास रदा साहिबा, आप फातिमा कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, शायरा हैं, सोज़ ख़्वानो मनकबत ख़्वानी के फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं। आपसे मोहतरमा रिजवाना अब्बास साहिबा अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। आपसे दरख्वास्त है कि अपना कोई ताज़ा कलाम बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मदह में जो लिखा हो उसको सुनाकर हमको मसहूर और महफिल को पर रौनक बनाइए। जज़ाकल्लाह खैर।
कुदरते इलाही का एक मोजज़ा जहरा, कुदरते इलाही का एक मोजज़ा जहरा, आलमी की हर जन की तू है सैयदा जहरा, आलमी की हर जन की तू है सैयदा जहरा। और चांद हो के सूरज हो या फलक के हों तारे, चांद हो के सूरज हो या फलक के हों तारे, तेरे दर से पाते हैं सदका नूर का जहरा, तेरे दर से पाते हैं सदका नूर का जहरा। और जो नबी जहां के लिए रहमतों का बायस है, जो नबी जहां के लिए रहमतों का बायस है, उसके वास्ते रहमत तू है बाखुदा जहरा, उसके वास्ते रहमत तू है बाखुदा जहरा। और कुल्ले ईमा जिसको कहा दहर में पयंबर ने, कुल्ले ईमा जिसको कहा दहर में पयंबर ने, उसके निस्फ ईमा की, उसके निस्फ ईमा की तू मुहाफिजा जहरा, उसके निस्फ ईमा की तू मुहाफिजा जहरा। और जो है सरदारे जिना वो है लाडले तेरे, जो है सरदारे जिना वो है लाडले तेरे, और उनकी जन्नत भी तेरे जेरे पा जहरा, और उनकी जन्नत भी तेरे जेरे पा जहरा। और पेश करती हूं कि अफजलुन निसा है तू, बाप की भी माँ है तू, अफजलुन निसा है तू, बाप की भी माँ है तू, तेरी हर सिफत आला मलकाए हया जहरा, तेरी हर सिफत आला मलकाए हया जहरा। मक्ते के मिसरे पेश करती हूँ। ये रिदा दुआ है मेरी सैयदा के सदक़े में, ये रिदा दुआ है मेरी सैयदा के सदक़े में, अब तो जल्द बन जाए तेरा रोज़ा या जहरा, अब तो जल्द बन जाए तेरा रोज़ा या जहरा, अब तो जल्द बन जाए तेरा रोज़ा या जहरा। कुदरते इलाही का एक मोजज़ा जहरा, आलमी की हर जन की तू है सैयदा जहरा।
बहुत शुक्रिया मोहतरमा रिजवाना अब्बास साहिबा, माशाल्लाह बेहतरीन कलाम, अल्लाह करे जोरे बयां और ज़्यादा।
अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ मजीद मौजूद हैं और नुज़हत अब्बास, आप माशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हैं, आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ज़ाकरी के फ़राइज़ एक अरसे से अंजाम देती चली आ रही हैं, शायरा हैं, अलमुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और मुआशरे में तबलीगाते और तालीमाते आले मोहम्मद को राइज करने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही हैं। माशाल्लाह आप बजाते खुद एक इल्मी और मजहबी घराने से ताल्लुक रखती हैं, आप बच्चों की परवरिश के हवाले से माशाल्लाह आपके बच्चे अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खोहर।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پروگرام عالمی یوم خواتین بسلسلہ عشق ولادت با سعادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ.
اور جیسے آپ ایک ماں بھی ہیں، ایک معاشرے کی فعال خاتون بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت و کردار سے کس حد تک درس حاصل کیا، اور اس کو اپنی زندگی میں یعنی کون سا پہلو ایسا تھا جو آپ کے لیے بہت بہتری، یعنی آپ نے اس کو رول ماڈل بنا کے پیش اپنے لیے رکھا اور اس پہ پھر عمل کر کے خود بچوں کی بھی بہترین تربیت کی، خود بھی معاشرے میں کام کیا، تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ بیوی کا کون سا پہلو زیادہ آسان ہے ہمارے لیے یا زیادہ قابل عمل ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے ایک معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، اور سب سے پہلے آیت قرآن اور قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اور ایک حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس موضوع کے اوپر، اور تمام آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، خصوصاً زمانے کے امام کی بارگاہ میں بی بی کی آمد اور ان کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتا فی القربا. بہت مشہور اور معروف آیت کہ کہا پروردگار عالم نے کہ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کی جائے. اور اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے رسول کے جو بہت معروف اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تمام حوالوں کے ساتھ. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں ایسی چھوڑے جاتا ہوں کہ جن سے اگر متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ قرآن اور یہ اہل بیت ہمارے لیے ہر ہر قدم پر دین و دنیا کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی فقط آخرت میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے، اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے 124,000 پیغمبر، 12 ائمہ معصومین علیہ السلام، لیکن خواتین کی، صرف خواتین کی نہیں بلکہ مردوں کی ہدایت کے لیے بھی بی بی کی سیرت، بی بی کا اخلاق، بی بی کی شخصیت مکمل طور پر نمونہ عمل ہے. اور ہمارے سامنے زمانے کے امام کی حدیث موجود ہے کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام زمانے پر اللہ نے ہمیں حجت قرار دیا اور ہماری جدہ ماجدہ کو ہم سب پر حجت قرار دیا. اللہ اکبر، 18 سالہ سن والی بی بی کا اتنا مرتبہ، اتنا مقام کہ وہ آئمہ اطہار علیہ السلام کے لیے اور تمام کائنات کے مردوں کے لیے بھی، اس نہ فقط عورتوں کے لیے، رول ماڈل قرار پاتی ہیں. تو بی بی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اور آیات قرآنی کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم نے بتول اور طاہرہ تو جناب مریم کو بھی بنایا، لیکن کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو تشنا ہیں، جو ہمیں فخر جناب مریم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے اندر نظر آتے ہیں، اور یہ پہلو ایسے ہیں کہ اگر آج کی بچی ہمیں یہ کہتی نظر آتی ہے اکثر کہ ہم کیسے بی بی کی سیرت کی پیروی کریں، وہ بی بی اب سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئیں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، اس دور میں اس دور کی خاتون کا کیسے ہم پیروی کر سکتے ہیں، ان کو فالو کر سکتے ہیں. تو عزیزم، یہ بات ہے کہ انسان کی ضرورتیں نہیں بدلتی، ازل سے لے کر ابد تک وہی ضرورتیں رہتی ہیں. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ اگر انہیں ضرورت پڑتی تھی سفر کرنے کی تو وہ خچر پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں جہاز میں سفر کر لیتے ہیں، گاڑی میں سفر کر لیتے ہیں، یعنی بنیادی ضرورت سفر کرنا اور منزل مقصود پر پہنچنا ہے. یا اسی طرح سے بچیاں کہتی ہیں کہ حجاب، اس زمانے کا حجاب اور اس زمانے کا حجاب، کتنا فرق ہے زمانوں کے اندر، لیکن حجاب ایک ضرورت ہے، عورت کی ضرورت ہر زمانے میں ازل سے لے کر ابد تک. اور حجاب فقط ایک کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، حجاب کے معنی بہت زیادہ وسیع ہیں. آج کی عورت کو بھی اسی طرح حجاب کی ضرورت ہے جیسے اس زمانے کی عورت کو تھی، اور تا قیام قیامت خواتین کو آج ये बात की जाती है कि बराबरी की, मसावात की बात की जाती है, कम्युनिज्म का दौर है और लोग सोशलिज्म की बात करते हैं, लेकिन हम बीबी के घर में मसावात का क्या तरीका देखते हैं? आज का दौर वो दौर है कि जिसमें खातून ये कहती है हमें मर्दों के बराबर हुकूक मिले, और वो घर से बाहर निकलने को इस वजह से तरजीह देती है कि मर्दों के बराबर उनको हुकूक मिल जाए। अब हुकूक दीन के मानी में अगर हम देखें तो दीन फराइज की बात करता है, हुकूक की बात कम करता है, फराइज की बात ज्यादा करता है। तो बीबी के यहाँ मसावात का तरीका क्या है कि एक दिन शहजादी या कौनैन खुद काम करती है, एक दिन जनाबे फिजा काम करती है। अल्लाह अकबर, आज की औरत क्या करती है कि जब वो बराबरी का दावा करने सड़कों पर निकल आती, तो यहीं से स्टार्ट करो। तो खवातीन के रोल मॉडल के लिए सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा बिनते रसूल जनाब सैयदा की शख्सियत ता कयाम कयामत एक रोल मॉडल है। जो भी जमाना आ जाए, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, एक खातून जो 60 साल की उम्र रखती है, एक खातून जो 18 साल की उम्र रखती है, सबके लिए बीबी की शख्सियत इंतहाई दर्जा अहमियत की हामिल है। और हम ये देखते हैं कि शहजादी ने अभी पैदा भी नहीं हुई लेकिन किस तरह से माँ के लिए मुनिस व गमखार बनकर दिखाया। वो मलिकतुल अरब कि जो सोने और चांदी के बने हुए तारों से बने हुए कपड़े जेबतन करती थी और हमेशा फिर अपनी कनीजों को दे दिया करती थी, एक मरतबा पहनने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद। वो जनाब खदीजा किस कैफियत में शुएब अबी तालिब की सख्तियां उठाती हैं, वो यानी इतनी ज्यादा सख्तियां मलिकतुल अरब उठाती हैं और बीबी ये देख रही है, लेकिन अभी पैदाइश भी नहीं हुई। वो बीबी के जिनका बायकॉट कर दिया गया है उनको की मुनिस व गमखार कौन है, रसूल खुदा से कहती हैं बीबी कि ये बच्चा जो मेरे शिकम में है मुझसे बातें करता है। यानी जब बीबी तन्हा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, और फिर इस बीबी की पैदाइश का एहतमाम भी अल्लाह ने कैसे किया कि माशरे ने बायकॉट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जनाबे मरियम, जनाबे सारा, जनाबे आसिया, जनाबे हाजरा तशरीफ लाती हैं। और इतनी बाअजमत बीबी कि अगर हम ये देखें कि बीबी ने कहा कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है कायनात की, तो फरमाया कि वो कि जिसे नामहरम ना देखे और जो नामहरम को ना देखे। अब बज़ाहिर इसके मानी ये समझ में आते हैं कि औरत फिर बाहर ही ना निकले, घर के गोशे में इबादत करती रहे, यही सबसे बड़ी इबादत है, घर को संभालना। बेशक प्रायोरिटीज हैं और घर को संभालना, शोहरदारी करना, बच्चों की परवरिश, उनकी बेहतरीन तरबियत करना खातून के लिए पहली उसकी तरजीह होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम ने किसी भी काम को करने से औरत को मना नहीं किया। सबसे पहले खातून जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम की पहली बिजनेस वूमेन है। तो खातून जो भी करना चाहे हिजाब के साथ, हया के साथ, पुरवकार तरीके से इस जमाने में अपना किरदार अदा कर सकती है जहां भी उसकी जरूरत है, लेकिन पहली तरजीह उसके बच्चे, उसका घर, उसका शौहर। अक्सर मदारिस की पढ़ी हुई बच्चियां ये कहती हैं कि सास की खिदमत करना जिम्मेदारी नहीं है, शौहर की खिदमत करना जिम्मेदारी नहीं है, और यही नारा आजकल बहुत ज्यादा लगाया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जनाब सैयदा ने मौला अली के घर में इतनी झाड़ू दी कि मौला कहते नजर आते हैं, बिनते रसूल ने इतनी झाड़ू दी कि उनके कपड़े गर्द आलूद हो गए, इतनी चक्की पीसी कि उनके हाथों में लहू रिसने लगा। लिहाजा वो शहजादी के इतना काम करती हैं। तो आज की बच्चियां अगर ये कहें तो अजीजम हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीजें शरीयत ने वाजिब नहीं की हैं, जैसे वुजू का करना वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज वुजू के बगैर नहीं हो सकती, जब तक इंसान वुजू ना करे उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसी तरह एक बच्ची की जो ससुराल में जाती है, जब तक वो ससुराल वालों का दिल ना जीत ले, जब तक वो सास ससुर और घर में रहने वालों का तमाम तरीके से, अच्छी तरीके से दिल ना जीत ले, शोहर के दिल में घर नहीं कर सकती। तो बीबी की सीरत पर अमल करने वाली उनकी कनीजे कभी भी आज के जमाने की औरत की तरह ये नारा लगाती हुई नजर नहीं आती कि हमें ऐसी बराबरी करनी है जिसमें घर का काम ना करना पड़े, जिसमें सास की खिदमत ना करनी पड़े। तो ये शहजादी की सीरत है, ये किरदार है। मेरा दिल चाहता है कि वो बीबी
कि जिसकी अजमत इतनी ज्यादा है कि अगर हम उनकी सीरत की पैरवी करें तो हमारी ये जिंदगी भी जन्नत बन जाए, और आखिरत तो फिर यकीनन ऐसी खवातीन की कि जो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पैरवी करें उनकी आखिरत तो फिर जन्नत है ही। तो उस बीबी के लिए एक कलाम मैंने लिखा है कि जिसमें 40 अलकाब बीबी के इस्तेमाल
माशाल्लाह
किए गए हैं।
माशाल्लाह,
तो 40 मोमिनीन अगर दुआ के लिए आमीन कह दें तो वो दुआ कबूल हो जाती है। 40 का हिस्सा बड़ा अहम है, तो इसमें बीबी के 40 अलकाब इस्तेमाल किए गए हैं। वो शहजादी के जो मुजाहिदा भी हैं, जो दाफ़े इमामत व विलायत भी हैं, यानी एक शख्सियत ये पैगाम दे रही है। आज के ज़माने में देखें कि जुल्म है, अंधेर नगरी है, बेईमानी है, करप्शन है, सब कुछ है, लेकिन जो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज हैं वो इनकलाबे जनाबे सैयदा को देखें, किस तरह अपने शौहर के साथ जाती हैं और अली अलैहिस्सलाम की विलायत का दिफा करती हैं, कैसे दरवाजे पर आकर बीबी अपने शौहर का दिफा करती हैं, विलायत और इमामत और दीन और शरीयत का दिफा करती हैं। तो वो बीबी की जो इतनी बहादुर है, तो कोई खातून ये नहीं कह सकती कि सिनफ़े नाजुक कोई काम नहीं कर सकती। अगर बीबी की सीरत को देखें तो इसमें वही कैफियत और बीबी के 40 अलकाब हैं। मैं आप लोगों की समाअत की नजर करती हूँ। ए हौरा ओ इंसिया ओ कौसर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। ए ताहिरा आबेदा ओ मुस्तर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। ए मेरी बीबी नबी की दुख्तर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। शजरतुत तैयबा शहीदा, ए सैयदा साबिरा शफीका। ए सालेहा साइमा सिद्दीका, ए मर्जिया राजिया नसीबा। ए रागिबा जाहिरा ओ तीमर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। अजब कयामत के थे वो सदमे जो बाद बाबा के तुम पे गुजरे। अजब कयामत के थे वो सदमे जो बाद बाबा के तुम पे गुजरे। ये गम जो रोशन दिनों पे पड़ते, सियाह रातों में वो बदलते। बतूले अजरा ओ अहदे अकबर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। अली के हक का दिफा करना, नगासिबों से जरा भी डरना। हर एक मैदान में खुद उतरना, न जोफ निस्वां पे तकिया करना। सुकूने कल्बो नबी यो हैदर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। ए जाहिरा ओ जकिया बीबी, ए वाफिया ओ वलिया बीबी। ए जाहिदा ओ वजीहा बीबी, ए साहिबा ओ रफिया बीबी। ए शाफिया अज़्ज़मीन महशर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। ए सैयदतुन निसा बीबी, ए मरकज हाय किसा बीबी। ए काहिरा नासिया ओ नकिया, मुताहिरा औलिया बीबी। ये जान मेरी निसार तुम पर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। ये दिल में नुजहत के आरजू है, हर एक लम्हा ये जुस्तजू है। अता करो उसको ऐसा रुतबा जो दो जहानों की आबरू है। कनीजी
आमीन
उसकी हो सबसे बढ़कर, कनीजी
आमीन
उसकी हो सबसे बढ़कर। दुरूद तुम पर सलाम तुम पर, दुरूद तुम पर सलाम तुम पर। और
माशाल्लाह
इस दुआ के साथ के परवरदिगारे आलम हमें सीरते जनाबे सैयदा सलामुल्लाहे अलैहा पर अमल करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। घरदारी करने में, तरबियत औलाद करने में, शोहरदारी करने में, और फिर उसके बाद माशरे के अंदर वो जुल्म व सितम, वो जो दुनिया के अंदर इस वक्त बेपनाह साजिशें हैं, शोरिशें हैं, उनमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक इनायत फरमाएं, ताकि जब जमाने के इमाम तशरीफ लाएं तो हम उनके अंसार में शामिल हो सकें और मौला ये कह सकें कि देखो ये वो ख्वातीन हैं सीरत जद्दा माजिदा जनाब सैयदा पर अमल करने वाली, कि जिन्होंने अपना किरदार जिस तरह से घर में अदा किया उसी तरह माशरे में, मुल्क और कौम के लिए और दुनिया में होने वाले जुल्म के लिए डट कर खड़े होने में इन्होंने उसी तरह किरदार अदा किया जैसे मेरी जद्दा माजिदा ने किया था। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए।
आलमी योम ख़वातीन बमनास्बत विलादत बसआदत शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा کہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل نشر کیا جائے گا. پروگرام کے اختتام پہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنے مہمانان گرامی ڈاکٹر زرین صادق، محترمہ حیدری فاطمہ، محترمہ نزہت عباس اور محترمہ رضوان عباس ردا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم کو وقت دیا اور اس محفل کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت و کردار اور فضیلت کا ذکر کر کے منور کیا. جزاک اللہ خیر. کل ہم دوبارہ آپ سے مزید میں دوسرے مہمانان گرامی کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.